अगर हमारे पास सिटीज हो, शहर हो, हमारे पास तो पिंड है और लाहौर तो पिंड, लाहौर पिंड है, इस्लामाबाद पिंड है, हाँ वीआईपी कल्चर बड़ा है पर पिंड है। खुदा के वास्ते मॉडर्न दुनिया में आ जाए, कदीम जमाने से निकल के मॉडर्न दुनिया में आ जाए और मॉडर्न दुनिया के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े होकर कम्पीट।
अब जब भी आपने कोई ट्रांजेक्शन करनी है पहले हमसे एनओसी ले लें। मसाइल ये नहीं है, मसाइल जो है वो बड़े डीपर हैं। वजह यही है कि हमने पहले समझने की कोशिश की है कि मसला क्या है, उसका हल क्या है, तब जाके फिर आप इम्प्लीमेंट करेंगे कुछ होगा। अभी अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि हमें एक नुस्खा आ जाता है बाहर से, वो जिसको हम टेक्निकल असिस्टेंटशिप कहते हैं, वो अच्छे होटलों में बैठ के एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन जाता है और उसकी उसको फिर हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं जिसमें ग्राउंड रियलिटी नहीं होती।
दलेर हो अपनी ताकत समझें, ये जब हम अपनी ताकत समझेंगे, हम मांगे तो सही, हम कितना मांगते हैं।
मैडम हम तो कहते हैं ये डेमोक्रेसी है ही नहीं, हम तो कहते हैं ये डेमोक्रेसी आपकी बड़ी फॉल्टी है।
इसमें सिर्फ हम अपनी ख्वाहिशात का इजहार नहीं कर रहे, ये पिछले 4 साल की हमारी जो सारी रिसर्च थी, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वेबिनार्स जो हमने इंटरेक्शंस की पूरे पाकिस्तान में जाके, ये उसके नतीजे में ये डॉक्यूमेंट बना है।
पाइड की इस्लाह रूम से आप सबको खुश आमदीद। आपके इलम में होगा पाइड ने चंद दिन पहले ये एक रिफॉर्म मैनिफेस्टो जो है वो लॉन्च किया है, तो आज हम अपनी टीम के साथ बैठे हुए हैं इसी पे डिस्कशन करने के लिए। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर नदीमुल हक से पूछना चाहूँगा कि सर ये जो आपने रिफॉर्म मैनिफेस्टो लॉन्च किया है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों पाइड ने रिफॉर्म मैनिफेस्टो लॉन्च किया है?
वकार साहब ये इंटरेस्टिंग सवाल है। पाइड जो है ना, पाइड एक कौमी थिंक टैंक है और हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरी कौम के जो भी मसले हैं, बलोचिस्तान से लेके गिलगित बल्तिस्तान से लेके कराची से लेके जो भी हम पूरे मसले एनालाइज करें, बोथ मैक्रो और लोकल, और उन मसलों में हम बार बार जो तहकीक कर रहे हैं पिछले कितने सालों से, हम देखते हैं जो एक चीज़ मिसिंग है कि हमारे सारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो हैं वो सिर्फ एक बात करते हैं कि टैक्स बढ़ा दो सब मसले ठीक हो जाएंगे, या बाहर जाके भीख मांग लो सब मसले ठीक हो जाएंगे। हमने देखा है कि ये बात बिल्कुल गलत है। हमने देखा है कि हमारे पास सारे इदारे बैठ गए, सारी हमारी लीगल सिस्टम, जुडिशल सिस्टम, सिविल सर्विस सिस्टम, हमारी शहरों की तरीक़ेकार चलाने के, हमारी एनर्जी के तरीक़ेकार चलाने के, हमारे पानी के तरीक़ेकार चलाने के, हमारी हर चीज़, जो हुकूमत जो मुल्क होता है वो एक सिस्टम होता है, हमारे सब सिस्टम टूट चुके हैं। तो हमने जितना हम हाथ डालते हैं, हमने बड़ी किताबें बड़ी चीज़ें लिखी, जितना हम हाथ डालते हैं सिस्टम टूटा होता है। अब सिस्टम टूटा हो तो क्या करें? तो हम कह रहे हैं कि ये इलेक्शन पे जब हारे तो हम देखते हैं हमारा इलेक्शन सिस्टम टूटा हुआ है, खैर उस पर भी हमने लिखा है। फिर हम देखते हैं कि जी ये जो लोग हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़, ये गवारा ही नहीं करते कि मैनिफेस्टो दें। अब भी इलेक्शन से 6 दिन पहले थोड़े बहुत आए हैं, उनमें भी कमज़ोर है, तो हमने तो पहले इशू कर दिया था ये मैनिफेस्टो, इसलिए कि इनको एज अ कौमी थिंक टैंक एक मवाद प्रोवाइड करें कि इससे चीज़ें ले लें। ये हमारा मैनिफेस्टो, हमको पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है, हम तो सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि भाई आप ले लें एज अ कौमी थिंक टैंक, आपको दे रहे तोहफा दे रहे, आप प्लीज़ इसमें ले और बातें करें और बनाएं। पर पता नहीं उन्होंने क्या लिया क्या
अच्छा,
लिया।
इसमें एक चीज़ आप ज़रूर ऐड करें कि इसमें सिर्फ हम अपनी ख्वाहिशात का इजहार नहीं कर रहे, ये पिछले 4 साल की हमारी जो सारी रिसर्च थी, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वेबिनार्स जो हमने इंटरेक्शंस की पूरे पाकिस्तान में जाके, ये उसके नतीजे में ये डॉक्यूमेंट बना है।
लेकिन यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा पहले भी बात होती रही है, रिफॉर्म्स कुछ हुए भी हैं, लेकिन कोई खातर ख्वाह उनका नतीजा निकला नहीं। अगर हम एज एन इकोनॉमिस्ट में देखूँ तो इसमें हम क्या ऐसी नई चीज़ ऑफर करने जा रहे हैं कि यहाँ आप समझते हैं कि ये जो रिफॉर्म आइडियाज़ हैं ये चेंज कर सकते हैं?
देखिए, रिफॉर्म आइडियाज़ कभी भी इमिजिएटली हम ये एक्सपेक्ट भी ना करें कि जी ये डॉक्यूमेंट हमारा जो है वो लॉन्च हुआ है और बस कोई इसको देखेगा, इम्प्रेस होगा और ये सब कुछ कर लेगा। रिफॉर्म में वक्त लगता है और हमारा एटलीस्ट पाइड में जो है ये बिलीफ है कि रिसर्च बेस्ड, और हम क्यों हर जगह गए कि हर जगह के लोगों की इसमें जो ओपिनियन है वो शामिल हो।
हर जगह ये बताइए ना कहाँ कहाँ गए
हम। इस्लामाबाद में तो हम हैं, हम प्रोविंशियल कैपिटल्स में गए, कराची, क्वेटा, पेशावर, लाहौर, लेकिन इनसे हट के हम, क्योंकि इन शहरों की बात तो वैसे भी सुनी जाती है, उनके पास अपने भी जो हैं थिंक टैंक्स हैं या इन एनी केस उनकी से कहीं ना कहीं हमें सुनाई देती है. हम जो स्लाइटली छोटी जगह थी, जैसे हम मालाकर्ण गए, हम कश्मीर गए, हम गवादर गए और
बहावलपुर गए,
हम बहावलपुर गए, मुल्तान बहावलपुर भी मतलब मुल्तान एटलीस्ट एक बड़ा शहर है पूरे पाकिस्तान में. और अगर सपोज हम बहावलपुर गए तो ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ बहावलपुर गए, हमने वहाँ जो और आसपास के थे उनको वहाँ हमने बुलाया.
फिर जी देखिए, हमारा रास्ता प्रोजेक्ट जो है उसमें भी हमने 1200 यूनिवर्सिटी से पूरे मुल्क में 1200 रिसर्चर से 60 यूनिवर्सिटी.
अब ये अगर आप 6 राउंड उसमें शामिल कर लें तो वो 2500 रिसर्चर्स जो हैं वो आपस में
सारे पाकिस्तान से. तो इससे जो है हमें बहुत, हम ये बार बार ये इसलिए एम्फसाइज कर रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद में बैठ के नहीं बनाया और हमने हर किसी से बात क्यों कर सब कितने लोगों से बातें क्यों.
बिल्कुल सर, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरी नज़र में एक सबसे अहम चीज़ वो है जो पिछले दिनों पार्टी ने एक वेबिनार करवाया था जिसमें मोंतिक सिंह कह रहे थे कि जो रिफॉर्म है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और जब इकानोमी को रिफॉर्म करना और टिंकरिंग जो है ना वो काम नहीं करेगी, स्पेशली जिस मैस में हम हैं अभी. हमें एक ओवरऑल रिफॉर्म जो है वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा जिसमें हर फील्ड में, जैसा आप पहले बता रहे थे कि हर फील्ड में हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है. हाँ, उसको प्रायोरिटाइज कैसे करना है वो एक अलहदा बहस है, लेकिन हमें टिंकरिंग वाले जो पहले हम करते हैं.
जी जी, इसको अगर आप बड़े सिंपल अल्फाज में इस्तेमाल करें, बात करें, छोड़ें बहुत बातें इसमें. देखें ना जी, इसमें 10 चैप्टर्स हैं और मेरा ख्याल कोई 200 से ऊपर हमने बातें की रिफॉर्म की. और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये रिफॉर्म एक दिन में नहीं होगा. रिफॉर्म इज़ अ प्रोसेस, आपने खुद कहा, मोंटे कार्लो वालिया ने भी कहा था, सब दुनिया में रिफॉर्म ये आपको बदलना है अपने आप को और बहुत डीपली बदलना है इस मुल्क में. इन अ वर्ड आप क्या कहेंगे, क्या हम कह रहे हैं?
इन अ वर्ड हम ये कह रहे हैं कि अगर आप मेरे से पूछें कि हम अपनी सोच बदलें और अपने आप को बदलने के लिए तैयार करें. अच्छा, इसमें एक
चीज़ अगर मैं इसको इस तरह कहूं, आप इस पे ऑब्जेक्ट करेंगी
क्या
कि खुदा के वास्ते मॉडर्न दुनिया में आ जाएं, कदीम जमाने से निकल के मॉडर्न दुनिया में आ जाएं और मॉडर्न दुनिया के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े होकर कम्पीट करें? वकार साहब ने गलत
कहा. बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्रीड, फुली एग्रीड.
और मॉडर्न की जो एक आम फहम डेफिनेशन है उससे हट के मॉडर्निटी को सोचें.
वो क्या
मतलब उसको हमेशा, हाँ जी आप एथियस्ट हो गए, आप सेक्युलर हो गए, आप गैर इस्लामी हो गए, ये बिल्कुल बात
नहीं. मैं अगर मॉडर्न की डेफिनेशन, मैं मॉडर्न की डेफिनेशन अगर दूं कि हम जाके ओलंपिक गेम में जीते, औरतें भी मर्द भी, ये ना करें कि औरतें फिर अलग है और आप जाके विंबलडन में खेलें टेनिस,
बिल्कुल
ठीक है, और जीतें, और ये ना फिर कहें कि ओए मेरा हिजाब खराब होगा, ठीक है. दूसरी चीज, आप जाके क्या कहते हैं नोबेल प्राइज जीते ना, अगर दुनिया के साथ चलना है तो दुनिया के साथ चलना है, माजी में रहना है तो माजी में रहना. क्योंकि आप इख्तलाफ करेंगे,
मैं इख्तलाफ करूंगी कि मेरे लिए, मेरे ख्याल में जो मैं पाकिस्तान को देखना चाहती हूँ, एक ऐसा मुल्क जो हाई एम करता है, जो कंपेटिटिव है और ओलंपिक्स आप हिजाब पहन के भी जीत सकते हैं,
जिसमें औरतें घर बैठती हैं और किचन में बैठती
हैं. नहीं नहीं नहीं, कंपेटिटिव और जहाँ जो जो एस्पिरेशंस रखता है, किचन में मैं भी बैठती हूँ लेकिन मेरी साथ एस्पिरेशंस भी हैं.
क्यों वकार साहब? और वकार साहब को बताएं क्या कहें.
अच्छा, मैं इससे पहले आगे बढ़े, मैं डॉक्टर ने अब आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो रिफॉर्म डॉक्यूमेंट है,
मॉडर्नाइजेशन बात ना, ये बड़ी अहम चीज है इस सारे डॉक्यूमेंट.
मेरी नजर में सर, मॉडर्नाइजेशन जो है, इट डजंट मैटर विद कि आपकी सोशल वैल्यूज क्या हैं, इट व्हाट वी रिक्वायर्ड इज मॉडर्न गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जो कि इस डॉक्यूमेंट में भी हम बात कर रहे हैं कि आपके अगर इंस्टीट्यूट जो है वो मॉडर्नाइज हो जाएंगे.
व्हाट अबाउट अ मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर? डोंट वी रिक्वायर अ मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर एज वेल?
अच्छा, मुझे नहीं पता कि आपकी मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है. मतलब आप थोड़ा सा बहुत ही उसको एक कन्फाइंड से तरीके से डिफाइन करते हैं, जो मेरा और आपका एक परमानेंट इख्तलाफ है. हम इस वक्त उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक फॉरवर्ड लुकिंग सोच, एक दुनिया का मुकाबला करने वाली सोच. ऐसा क्यों है कि हमारे कोई भी इंडिकेटर्स हों, आप सोशल इंडिकेटर्स की बात करें जिसके बारे में लोग फील भी करते हैं, पाकिस्तान हमेशा नीचे होता है. हर कोई रेटिंग आती है जहाँ में वन होना चाहिए हम लास्ट होते हैं, जहाँ लास्ट होना चाहिए वहाँ हम वन होते हैं. कुछ तो है हमारे,
लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी कंट्राडिक्शन है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में हम बाकी सबसे बहुत बेहतर
हैं. वी जस्ट डोंट केयर.
क्या हम सोचते नहीं हैं या हम इन चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं कि हमारे यहाँ पॉवर्टी है, हमारे यहाँ गुर्बत है, लोग
देखें लो ये इस तरह के सारे जो परसेप्शन सर्वेज होते हैं, दे शुड बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मोर देन अ पिंच ऑफ सॉल्ट. बहुत दफ़ा मैं बहुत फील्ड में जाती हूँ, आप जिस तरह सवाल करते हैं, और इवन मैं कहूँगी वो भी सोशल वैल्यूज़ का हिस्सा बन जाता है कि आपको जवाब क्या देना है। अब इस तरह का सवाल कि अच्छा जी आप खुश हैं, हाँ जी अल्लाह का शुक्र है, अब इसमें आप इसको क्या कहेंगे कि ये खुशी है ये ना खुशी है। हम जिस तरह गुड चाइल्डहुड में बात कर रहे हैं, अब ये इस तरह के सर्विस की एक बहुत अच्छी मिसाल है, हम जब लोगों से पूछते हैं कि आपका चाइल्डहुड अच्छा था, फौरन से सब कहते हैं हाँ, क्योंकि उसको वो परसीव कैसे करते हैं कि ना कहने का मतलब है कि वो सॉर्ट ऑफ अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट कोई बात कर रहे हैं, इसलिए वो हाँ कहते हैं। जब हम उसके उसको थोड़ा सा आगे जाते हैं, अच्छा आपने ये एक्सपीरियंस किया, ऐसा था वैसा था, उसमें सब चीज़ों के जवाब ना में आ रहे होते हैं।
दूसरी चीज़ जो मैं इसमें ऐड करूँगा वकार साहब, वो ये है कि जो नायाब के बेसिक्स के सर्वे ने शो किया और जो हम बार बार कहते हैं और हम सब जिस खत्ते में गए हमने देखा है कि पाकिस्तान के बच्चे मुरझा गए, उनमें एम्बिशन कम है, वो सोचते हैं सरकारी उनको मिल जाए मरात तो वो ठीक हो जाएंगे। और हमारी पार्टीज़ ने भी रिकग्नाइज ये किया, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सब ने ये कहा है कि हम आपको चीज़ें देंगे, ये नहीं कहा कि आपको मौका देंगे। मौके जो हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ पे हम बात करते हैं कि हम बच्चे फील करते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं है। बेसिक सर्वे जो मैडम ने किया था उसमें नज़र आया है कि 70% बच्चे यहाँ से बाहर भागना चाहते हैं। तो जो बच्चों में एम्बिशन नहीं, तो फिर तो खुशी होनी होनी।
सर आपने बड़ी एक प्यारी बात की यहाँ पे, अगर हम देखें कि डेवलपमेंट का जितना भी एजेंडा अभी तक फॉलो किया जा रहा है वो ये है कि आप सब्सिडीज दे दें, चाहे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत में हो, ताकि लोगों को पॉवर्टी ट्रैप से निकाला जा सके। लेकिन यहाँ पे इस पाइडेड रिफॉर्म मैनिफेस्टो में आप एक नई चीज़ दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट इस तरह नहीं होगी कि बिस्प के थ्रू हो, आप अपॉर्चुनिटीज दें। इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि पॉवर्टी को आप कैसे देखते हैं।
यहाँ मैं ये ऐड कर दूं कि पाइड में ही जो हमने रिसर्च, अच्छा एक चीज़ इसमें हम बार बार बात कर रहे हैं पाइड की रिसर्च, पाइड की रिसर्च, आपको इस डॉक्यूमेंट में तमाम रेफरेंसेस भी मिलेंगे, जिसमें यहाँ अगर हमने एक लाइन लिखी हुई है तो उसके पीछे हो सकता है कि दो पेपर्स जो हैं वो बैकग्राउंड में हो। पाइड की रिसर्च कहती है कि बिस्प से पॉवर्टी नहीं कम हो रही है। अब एंड टू अस द वेरी फैक्ट कि हम हर दफ़ा कहते हैं कि जी बिस्प के हमने पैसे बढ़ा दिए, अब बिस्प को इतनी एलोकेशन होगी, अब ये 400 बिलियन से 800 बिलियन और 800 बिलियन से 1200 बिलियन होगी, ये हम क्यों नहीं सोच रहे हैं कि ये सॉर्ट ऑफ फेलियर है कि आपको ये पैसे बढ़ाने पड़ रहे हैं। ज़्यादा पैसे बढ़ाने का मतलब है कि आप खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि गरीबों की तादाद जो है वो बढ़ रही है, ठीक है आप उनके अमाउंट्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं चाह रहे हैं कि एक ऐसी एनवायरनमेंट हो कि जहाँ उनके पास अपॉर्चुनिटी हो और वो इन कैश हैंडआउट से निकलें।
तो फिर बताइए आपका मैनिफेस्टो अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या कह रहा है।
सर हमारा मैनिफेस्टो तो अपॉर्चुनिटीज के बारे में ये कह रहा है कि नौजवानों को मौका दें। गुड चाइल्डहुड की अभी आपने बात की, गुड चाइल्डहुड क्या है कि एक बच्चा जो है वो अगर जिंदगी में उसका कोई ड्रीम है वो उसको कैसे रियलाइज कर सकता है, उसकी आप उसको अपॉर्चुनिटी दें। इसकी अभी मैडम ने आपको बताया कि हम ग्वादर गए, ग्वादर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे लिए बड़ा इमोशनल एक इंटरेक्शन हुआ बच्चों के साथ। हम उनकी कम्युनिटी सेंटर में गए, वहाँ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, जब पूछा कि आप क्या बनना चाह रहे हो तो वो कोई नेमार बनना चाह रहा था, कोई रोनाल्डो बनना चाह रहा था। बट क्या हमारी सोसाइटी अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है ग्वादर के उन बच्चों को कि वो रोनाल्डो बन सकें? मेरा ख्याल है कि यहाँ पर हम लैग कर रहे हैं।
पर वो क्यों?
अच्छा, थोड़ी सी
मैडम इसमें देखें वो क्यों, क्योंकि बताइए हमारे मुल्क में इतने छोटे फर्म्स हैं, इन्वेस्टमेंट कोई हो नहीं रही, और आपके शहरों में क्या मौके बताइए, क्या हमारी रिसर्च बताती है इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही, क्यों हमारे शहर इतने बैरन हैं?
हमारे शहरों पे भी आती हूँ, उससे पहले जो ये बात हुई इसमें आपको एक बहुत मेजर हिस्सा मिलेगा रेगुलेशन पे, आप चीज़ों को चलने ही नहीं देते। जब आपको 250 लाइसेंसेस और परमिट्स चाहिए कुछ भी काम करने के लिए, तो कोई भी शख्स इन्वेस्ट करने से पहले भी 100 दफ़ा सोचेगा, और अपॉर्चुनिटीज तो आप वैसे ही किल कर रहे हैं। एक पूरा पूरा एक क्या मैं कहूँ जिक्सो है विच इज़ गोइंग रॉन्ग। मैं उसको
नहीं, वो जिक्सो बड़ा सिंपल है ना, अगर बाबूगिरी है वकार साहब, अगर बाबूगिरी है लाइसेंस, कितनी रेगुलेटरी एजेंसी हमारे पास
सर, वही पाइड ने जो काम किया हुआ है उसमें हमने यही देखा कि सिर्फ इस्लामाबाद में 118 रेगुलेटरी बॉडीज हैं। पाइड स्लज सीरीज जो कि वेल नोन है, अब सबको पता होगा, वो उसमें हमने कैलकुलेट किया हुआ कि 45% ऑफ GDP जो है वो कास्ट है रेगुलेशंस की,
और ये मिनिमम एस्टिमेशन है, इससे ज्यादा हो सकती है,
ये अंडर हमने मिनिमम जो रखा हुआ है, तो ये ह्यूज बर्डन है।
45% जीडीपी कोई 20 एक्टिविटीज का, और मुल्क में तो मेरा ख्याल को हजारों एक्टिविटीज हैं।
बिल्कुल सर,
तो यानी कि अगर सारे जब हम कर लेंगे तो ये जीडीपी कितना हिस्सा जो है वो सिर्फ बाबूगिरी पेपर पुशिंग में निकल जाता है, फाइल यहाँ थी फाइल यहाँ चली गई, फाइल यहाँ थी फाइल यहाँ चली गई, अब फाइल के पीछे पीछे लोग जिंदगी जाया करते हैं,
जिंदगी
या जुडिशियल।
इंटरेस्टिंग चीज है जो पीडब्ल्यूडी जिस पे काम कर रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि ओवर द टाइम रेगुलेशंस कैसे बढ़ी। मैं सिर्फ आपको मिसाल देता हूँ कि ज़रात में एग्रीकल्चर सेक्टर में 2010 में हमारे पास 94 रेगुलेशंस RLCO जिसे रजिस्ट्रेशन लाइसेंसी सर्टिफिकेट्स अदर परमिशंस थी, और 2023 में वो फिगर बढ़ के 164 तक पहुंच चुकी है। मतलब बजाय इसके कि हम अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मॉडर्नाइज करें, हम ओवर रेगुलेशंस की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, रेगुलेशन में सबसे बड़ा मसला ये है, कुछ सेक्टर्स तो हमारे बहुत ओवर रेगुलेटेड हैं और कुछ सेक्टर्स बिल्कुल रेगुलेटेड नहीं है जहां पर रेगुलेशंस की जरूरत भी है। पाइड जो यहां पर प्रपोज कर रहा है वो ये नहीं कह रहा कि आप डीरेगुलेट करें। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में अंडरस्टैंडिंग है वो ये समझा जाता है कि हम कह रहे हैं डीरेगुलेट, हम कह रहे हैं कि अपना रेगुलेटरी स्ट्रक्चर जो है उसको मॉडर्नाइज करें। मॉडर्नाइज रिक्वायर्ड डीरेगुलेशन, रीरेगुलेशन, आपको सारा कुछ दोबारा से सोचना है।
अब ये जो इसके पीछे, इस स्टेटमेंट के पीछे मॉडर्नाइजेस रेगुलेशन सिस्टम, रेगुलेट प्रॉपरली करें, ठीक तरीके करें, इसके पीछे सारे रिफॉर्म बता जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखें ना, सिविल सर्विस रिफॉर्म आ जाता है, टैक्स रिफॉर्म आ जाता है, बहुत सारी, और ये सब चीजें हमने लिखी हैं। एक और चीज जो इन्वेस्टमेंट नहीं होती वो ये है कि रोज तो पॉलिटिकल लड़ाइयाँ होती हैं। हमारे इकतदार की जो जंग है उसमें आपको पता नहीं चलता आज सिस्टम कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, कहाँ नहीं जा रहा, तो लोग फिर इन्वेस्ट क्या करें। इन्वेस्टमेंट तो होती है 2-10-15 साल के लिए। इसमें एक और भी प्रॉब्लम है नायाबी भी, कि अगर रोज़ जो पॉलिटिकल जंग हो रही है तो उस काम क्या करें, और फिर आपके पास जो बंदे आ जाते हैं उनको काम नहीं आता, तो इसके ऊपर भी तो हमने कुछ सजेस्ट किया।
देखिए, पॉलिटिकल जंगें हर जगह ही चलती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक पॉलिसी कंसिस्टेंसी चाहिए, और पॉलिसी कंसिस्टेंसी को हम समहाउ एक ही गवर्नमेंट के रूल से पता नहीं क्यों जोड़ देते हैं। मतलब इंडिया की मिसाल हमारे सामने है, ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ जब मनमोहन सिंह था, मोदी और मनमोहन सिंह में कोई चीज़ सिमिलर नहीं है, लेकिन पॉलिसी कंटिन्यूटी जो है
उसमें, मैडम अगर आपकी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूँ, एक इनबिल्ट फ्लॉ है हमारे सिस्टम में कि हम हमारी पॉलिसीज जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर ऑफर करती हैं वो मोस्टली थ्रू PSTP आता है हमारे पास, तो वो जो हमारा लेजिस्लेटर है MNA जिसको हम लेके आते हैं, उसका फोकस होता है कि वो किसी तरह से डेवलपमेंट फंड्स ले ले अपने गली मोहल्ले के लिए, या फिर वो मिनिस्टर बन जाए। उसका कोई कंसर्न नहीं है कि वो कंसेंसस डेवलप करे पॉलिसी मेकिंग में, या कोई एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दे सके। तो वो एडहॉकिज्म चल रहा होता है, हम एक एडहॉक किस्म की पॉलिसी दे देते हैं जिसमें कोई थारो हमने थिंकिंग नहीं की होती ओवर द टाइम।
क्योंकि हमारा सिस्टम अभी भी ये, जिस तरह हम बहुत अपने हर रिसर्च में भी जो भी PSTP से रिलेटेड होती है बात करते हैं कि हम हक हैक मॉडल में फंसे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में फंसे हुए हैं, हम अभी तक जो इससे हट के चीज़ है उस तरफ जा ही नहीं रहे। ये हमारी कॉन्वर्सेशन में भी आ रहा है कि समहाउ पाकिस्तान में जिस तरह हर आइडिया को डिफाइन किया जाता है उसमें बहुत प्रॉब्लम है। रिफॉर्म की बात हो तो लगता है कि जी ये किसी के खिलाफ हम बात कर रहे हैं, हम मॉडर्नाइजेशन की बात हो तो लगता है कि जी ये तो लादीनियत की बात हो रही है, हम रेगुलेशन को ठीक करने की बात होती है तो कहते हैं कि जी ये तो कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं होना चाहिए। सारी डेफिनेशंस मेरे ख्याल में हमारी जो हैं ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या इन लफ्ज़ों का यही मतलब है। और इस एजेंडे में हमने इस मार्केट्स की हिस्सा जब बात करते हैं हम, तो वो एकदम से उसमें जालिम और मजलूम का आइडिया जो है वो आ जाता है। मार्केट को हम ये क्यों नहीं समझते कि एक ऐसी जगह जहाँ एक फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, अगर आप बहुत बड़े कोई साम्राज्य से आपका ताल्लुक है, आपके पास वो इंफॉर्मेशन है, तो एज अ कॉमन मैन मेरे पास भी वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हमने इसमें रियल इस्टेट की बात की कि ये इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए। आई थिंक द वे वी परसीव मार्केट्स, इट कैन बी एन इक्वलाइजर इंस्टेड के वो एक साम्राज्य और आप तो चाहते हैं कि जी बस वो मोनोपोली हो जाए, ये इट इज टोटली ऑन द कॉन्ट्ररी। और अगर इस मैनिफेस्टो को कोई भी पढ़ेगा तो वो देखेगा कि हम जगह जगह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन आइडियाज़ को مے بی ہمیں ڈفرینٹلی اپروچ کرنا ہے, نہ کہ جن بہت ہی آرکائک ڈیفینیشنز کے ساتھ ہم لے کے چل رہے ہیں.
اچھا میڈم, آپ نے ابھی بات کی حق ہے ایک ماڈل کی, اور ڈاکٹر ندیم آپ کا کافی کام بھی ہے اس پہ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ حق ہے کہ ماڈل ہے کیا اور اس میں کیا فلاز ہیں, ہمیں اب کیا کرنے کی ضرورت ہے, ڈیولپمنٹ ماڈل کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیے جی, سب سے امپورٹنٹ بات سمجھنے والی ہے, جیسے میں نے کہا نا, ہمارے اکنامک مفکر جو ان سے وہ بڑے فرسودہ باتیں کرتے ہیں, اور اس پہ بھی پائٹ بہت لکھتا رہتا ہے کہ وہ باتیں بس وہی کرتے ہیں جو ورلڈ بینک وغیرہ کہتے ہیں یا ڈونرز کہتے ہیں, ڈونرز کے لینڈرز جو ہمیں پیسے لینڈ کرتے ہیں, وہ ساتھ ایڈوائس بھی دیتے ہیں, تو ہم اس ایڈوائس کو لے بیٹھے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں. صرف ایک ہی ایڈوائس آتی ہے, ٹیکس لگائیں, ٹیکس لگائیں, ٹیکس لگائیں, اور پیسے بہت بھیک مانگیں, بھیک مانگیں. یہ کہاں سے آئی ہے بات؟ یہ آئی ہے کہ جب پاکستان شروع ہوا تھا, تو اس وقت جب انڈیپینڈنس ہوئی, تو باقی دنیا تو ساری ابھی کالنائز تھی. ہم پہلے انڈیپینڈنٹ سب سے گین کر گئے 1947 میں, وی ور ون آف دا فرسٹ کنٹریز ٹو گیٹ انڈیپینڈنٹ. انڈیا جو تھا اس کے پاس اکنامک تھنکنگ تھی, اور انڈیا کی اکنامک تھنکنگ چاہے فرسودہ تھی, پرانی تھی, بٹ ان کے پاس اکنامک تھنکنگ تھی. اس میں اپنی اکانومی انہوں نے کلوز کر دی, انہوں نے کوشش کی پلاننگ بنانے کی, اور انہوں نے کوشش کی امپورٹ سبسٹیوشن کرنے کی. ہمیں باہر سے گورے کنسلٹنٹ آئے ایک دو, ایک ہے گسٹاف پاپنک جس کا ہم نے ویڈیو بھی کیا ہے, اس نے بتایا کہ شروع دنوں میں ہمارے پاس ایک چیز یاد رکھیں, جب پاکستان پیدا ہوا یا آزادی ملی, ہمارے پاس ایک اکانومسٹ نہیں تھا اس ملک میں, تو باہر کے کنسلٹنٹ نے آ کے ہماری اکنامک پالیسی بنائی, اور انہوں نے کہا اس وقت زمانے میں جو چیز تھی کہ جی آپ ایک اکنامک پلاننگ کریں, اور دوسرا آپ کیا کریں کہ جی یہ ہارورڈ ایڈوائزری گروپ تھا,
اس کا مطلب ہے کہ یہ عادت ہمیں شروع سے پڑی ہوئی ہے کہ ہماری پالیسی میکنگ باہر سے کوئی اور کرے.
ہم ہمیشہ سے اس ڈرگ سے ہکڈ ہیں. اچھا جی, وہ نئی پالیسی انہوں نے کیا بنائی کہ جی آپ, اس زمانے میں بڑی ووگ میں تھی کہ جی آپ بورو کریں گے پیسے باہر سے کیونکہ آپ پیسے نہیں ہیں, دوسری چیز آپ نے انفراسٹرکچر بنانا ہے. اور یہ بات صحیح تھی اس وقت, پاکستان جب بنا ہے تو آپ یاد رکھیں ہمارے پاس تو سڑکیں بھی نہیں تھیں, ہمارے پاس انرجی بھی نہیں تھی, ہمارے پاس ایک فیکٹری تھی شاید ایک بھی نہیں تھی, تو یہ ماں تو ہمیں ضرورت تھی ان کاموں کی, تو وہ اس وقت شروع ہوا, اور ہم پھر بہت پیسے لینے بورو کرنے شروع کر دی, اور پیسے بورو کرنے شروع کر دی کیونکہ دنیا میں اور کوئی بورو کر ہی نہیں رہا تھا, ایڈ سسٹم ہی نہیں آیا تھا, وہ پیسے دینے کو پھر رہے تھے, انہوں نے دے دیے, ہم نے لے لیے. دو چیزیں ہم نے بڑی اچھی کی, وہ گورے کنسلٹنٹ نے کروا دی اور بڑی اچھی کی ہماری سول سروس کا بھی, اس میں میں داد دوں گا. ایک تھی منگلا, ایک تھی تربیلا, اس سے ہمارا ریگولیشن سسٹم بہت بڑھ گیا اور ہماری فائدہ ہو گیا. اب جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی بہت ہوئی 1990 تک, وہ بھی میرا خیال تھوڑا سا غلط بات ہے, کیونکہ دیکھیں جب ہم ایک بڑے لو بیس سے آ رہے تھے, ہمارے پاس تھا ہی کچھ نہیں, نمبر دو باقی دنیا آزاد ہی نہیں تھی, کمپٹیشن تھی کوئی نہیں, تو ہم اس وقت ہمیں ایک دم ایک بوسٹ ملا, ہماری اس میں کارکردگی کوئی نہیں تھی, ہم نئی چیز کوئی نہیں سیکھی. اب یہ ہوا کہ دنیا بدل گئی, آپ نے ڈیرن اسمگلو اور رابنسن کی کتاب پڑھی ہوگی, وائی نیشنز فیل, اس میں وہ کہتے ہیں ترقی جو ہے ہارڈ ویئر سے نہیں ہوتی, ترقی چیزیں بنانے سے نہیں ہوتی, ترقی ہوتی ہے آئیڈیا سے اور انسٹیٹیوشن سے. وہ ہم چیز بھول گئے. ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی پرانا ماڈل چھوڑ دیں, اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمارا پرانا ماڈل آپ دیکھیں, ہر آپ نے نئے حکومتیں دیکھیں جو آ رہی ہیں یا پولیٹیشن ہیں, وہ سب کہتے ہیں ہم سڑکیں بنائیں گے, وہ ابھی ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں, ہم انرجی لگائیں گے. ہمارا انرجی کا سسٹم جو ہے, ہم جتنی انرجی لگاتے ہیں اور نقصان بڑھتے ہیں, ہمارا سسٹم انرجی کا خراب ہے. ہم وہ بار بار اس میں لکھا ہوا ہے, ہم نے انرجی کا سسٹم ہمارا ٹوٹا ہوا ہے, اس سسٹم کو تو جوڑنا ریفارم ہے. ایک اور بات آپ نے کہی تھی بڑی اچھی, جس پہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے بڑے ریفارم کیے ہیں. دیکھیے ہم نے جو ریفارم کیے وہ ورلڈ بینک وغیرہ جو کہا ہے, ہم نے ایک نیا پروجیکٹ لگا دیا. فار ایگزامپل ہمارے ریفارم میں ہم نے اتنی چیزیں بنا دی ہیں, فار ایگزامپل ڈیزاسٹر کے لیے ہم نے 10 ادارے بنا دیے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس اپرچونیٹی کے ایک ادارہ نہیں ڈیزاسٹر کے لیے 10 ہے, ٹھیک ہے, انویسٹمنٹ کے لیے آپ نے 3-4 ادارے بنا دیے, انویسٹمنٹ نہیں بلکہ 10 ادارے بنا دیے, ہر پروونس میں بنانا ہوتا ہے, تو پھر وہ انویسٹمنٹ آپ کی بڑھتی نہیں ہے, وہ بنا دیتے ہیں. پھر ٹریڈ کے لیے آپ نے 10 ادارے بنا دیے, وہ بڑھتی نہیں ٹریڈ کر.
لیکن سر جب آپ پالیسی میکر کو دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ روڈ اور سڑکیں نہ بنائیں, ہارڈ ویئر نہ بنائیں, سافٹ ویئر پہ جائیں, تو وہ تو پھر بات آ جائے گی, وہ کہتے ہیں ہم تو یونیورسٹیز بنا رہے ہیں, لیکن یہاں پہ اس ڈاکومنٹ میں ہم جو بات کر رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز نہیں ہونی چاہیے, تو پھر سافٹ ویئر کہاں سے آئے گی؟
نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یونیورسٹیز نہیں ہونی چاہیے, ہم کہہ رہے ہیں کہ نئی یونیورسٹیز بنانا بند کرو, کیونکہ جو ایگزسٹنگ یونیورسٹیز ہیں ان کی کوالٹی اب بہت پور ہو گئی ہوئی ہے, اور وہ ہماری اپنی اسٹڈیز ہمیں بتا رہی ہیں کہ جو زیادہ پڑھا لکھا آپ کا نوجوان ہے وہ زیادہ بے روزگار ہے. जो जिसने नौकरी देनी है उसको उसको बंदा नहीं मिल रहा, और जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको नौकरी
अच्छा,
नहीं मिल रही
एक
है।
और बड़ी इंटरेस्टिंग इनटेक है इस डॉक्यूमेंट में जो हम लोगों ने ली है पॉपुलेशन पे। मतलब पॉपुलेशन पे वो ऑल नो के बड़ा सीरियस इशू है, पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी जो है वो डाउनवर्ड अभी आ ही नहीं रही है।
क्यों सीरियस इशू है, क्या प्रॉब्लम है पॉपुलेशन? चीन पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जापान पॉपुलेशन
नहीं सर, हम अगर अपने कॉन्टेक्स्ट में हमारे हमारे कॉन्टेक्स्ट में देखें,
ये मैडम इज द पॉपुलेशन एक्सपर्ट, बताएं ना
क्या पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसके लिए जो टिपिकल रेसिपी हमें दी जाती है या अभी तक हम समझ रहे थे वो ये है कि हमने बर्थ को कंट्रोल करना है, कुछ इस तरह की चीजें मेजर्स लेनी है, अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में बहुत डिफरेंट चीज लेके आ रहे हैं।
मैं आपको बताती हूँ डिफरेंट चीज हमने क्यों लिखी। मतलब चीन और जापान की एग्जांपल्स हमारे लिए खैर बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। चाइना जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं अब वो उसमें से गुजर रहा है। जापान की वैसी फर्टिलिटी इतनी डिक्लाइन कर गई कि वो नेगेटिव ग्रोथ रेट में चले गए। इसमें हम जो थोड़ा सा डिफरेंट व्यू ले रहे हैं वो ये है कि आपकी अब जो फर्टिलिटी रेट्स हैं उनका डिक्लाइन अब स्टैग्नेट करके वो नहीं नीचे जा रहे हैं, और वही एक ही पॉलिसी के जी कॉन्ट्रासेप्टिव जो है इंक्रीज करें, रेजिस्टेंस है लोगों में, लोगों को बड़ी फैमिलीज चाहिए हैं। तो हम इसमें व्यू ये ले रहे हैं कि मे बी ये पूरा हमें पैराडाइम शिफ्ट करने की ज़रूरत है। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर बात करते हैं तो वो मलथूसियन ट्रैप जो है कि जी रिसोर्सेज आर लिमिटेड और पॉपुलेशन जो है उसको आउटग्रो कर जाएगी, इससे मे बी हमें अब निकलने की ज़रूरत है। चाइना और इंडिया हमारे सामने मिसाल है कि वो एक एक बिलियन की आबादी, पहले वो ओवर पॉपुलेटेड कंट्री समझी जाती थी, अब वो एक बिलियन की मार्केट समझी जाती है। पाकिस्तान इसको एज अ रिसोर्स यूज करे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है अगर ये बाकी सारी चीजें नहीं हो रही हैं,
अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं हो,
अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्योंकि इसी लफ्ज को आप इस्तेमाल करें कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है फर्टिलिटी की भी। बेकर की थ्योरी क्वालिटी क्वांटिटी ट्रेड ऑफ, ऐसा क्यों है कि वो फैमिलीज जिनके पास ज़्यादा पैसा है जो पढ़े लिखे हैं उनके कम बच्चे हैं, क्योंकि वो क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं, उनको पता है कि इसकी कॉस्ट बहुत है। बेहिसाब इस पर पाई ने काम किया है इंटरजनरेशनल इकोनॉमी का। बेसिक सी थ्योरी है कि जब तक आपका वेल्थ फ्लो जो है वो उसका डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगा, एल्डरली से बच्चों की तरफ नहीं जाएगा, बच्चे आपको अर्नर के तौर पे ही नजर आएंगे, वहाँ फर्टिलिटी ज़्यादा रहेगी। और दूसरा ये कि आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी इज सो हाई, कहीं दुनिया में ये नहीं हुआ कि फर्टिलिटी डिक्लाइन पहले हुआ हो और मोर्टेलिटी डिक्लाइन बाद में हुआ।
मैं अब जिस जिंदगी के हिस्से में आ गया हूँ
सर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर आई टोटली एग्री कि जी ज्यादा बच्चे होने चाहिए, एक फौज में हो, एक सिविल सर्वेंट हो, एक जज हो।
फिर मेरे से तो गलती हो गई ना, मैंने छह नहीं देखे,
इसीलिए मैं कह रही हूँ ये सारी चीजें इकट्ठी होनी है। एक सेकंड,
अब ये यंग आदमी है, इनको कहना कि छह बच्चे पैदा करें, छह लड़के पैदा करें, और
मैं इनसे
क्वालिटी एंड क्वांटिटी ये बच्चा पीएचडी भी करेगा तो यहाँ धक्के खाएगा ना बेचारा ग्रेड 17 में, अगर वो जनरल बन जाएगा।
इसलिए हम कह रहे हैं कि आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर अगर दुरुस्त होगा तो आपको छह बच्चों की जरूरत नहीं होगी, आपका जुडिशियल सिस्टम चल रहा होगा तो आपको जज की जरूरत नहीं होगी, अगर आपके इदारे जो हैं और ये आपके 50 रेगुलेशंस वाले और 250 रेगुलेशंस आपको नहीं चाहिए, आपकी नहीं जरूरत होगी कि हर दफ्तर में आपका कोई रिश्तेदार या आपका बच्चा बैठा हो।
यानी कि अगर आप हमारा इस्लाह का एजेंडा बनाते हैं तो फिर डिमांड फॉर चिल्ड्रन गिरेगी, वरना इस निजाम में इनका इनके लिए बेहतर है कि ये छह लड़के पैदा करें, लड़के नहीं,
छह लड़कों के चक्कर में उनके 14 बच्चे हो चुके होंगे। एवरीथिंग गोज टुगेदर, ये चीजें इंसान की जिंदगी आइसोलेशन में नहीं चलती। आपकी आंख में दर्द हो या आपके पेट में दर्द हो, जब मैं आपसे पूछती हूँ आपका क्या हाल है, जहां भी आपको दर्द हो आप कहेंगे मैं ठीक नहीं फील कर रहा हूँ। ये आपकी सारी चीजें जब तक दुरुस्त नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम जो है।
अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे मॉडर्नाइजेशन की, मतलब मॉडर्नाइजेशन में या डेवलपमेंट में ये भी तो है कि पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेट करती है फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, मतलब वो सिटीज में आती है। हमारे यहाँ भी यही फिनोमेना हम देख भी रहे हैं, लेकिन क्या सिटीज वो अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती हैं पॉपुलेशन को? सर आप बताएं कि आपका ये हाइपोथेसिस सिटीज आर इंजन ऑफ ग्रोथ, तो वो इंजन ऑफ ग्रोथ कैसे बन सकती हैं, क्या वो हैं या नहीं है?
अगर हमारे पास सिटीज हों, शहर हों, हमारे पास तो पिंड है और लाहौर तो पिंड, लाहौर पिंड है, इस्लामाबाद पिंड है। हाँ वीआईपी कल्चर बड़ा है पर पिंड है, क्योंकि क्यों मैडम मैं क्यों पिंड कह रहा हूँ बताइए, क्या ख्याल है?
सर पिंड है, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी, इसने माइग्रेशन की बात की, आप किसी भी शहरी शख्स से पूछें तो वो आपको माइग्रेशन के बहुत अगेंस्ट मिलेगा कि हाँ जी गांवों से लोग यहाँ आ रहे हैं, मतलब व्हाई डू दे थिंक कि उस शहर पे सिर्फ उनकी मोनोपोली है और गांवों से क्यों ना आए लोग। और मुझे कोई एक मिसाल दुनिया के किसी कोने की दे दें कि जिसने तरक्की की, व्हिचएवर वे पीपल वांट टू डिफाइन इट, कि जो एक रूरल शहर था, रूरल शहर था, रूरल बल्क था, रूरल इकोनॉमी थी। और ये स्टेटमेंट कहीं से भी एंटी एग्रीकल्चर नहीं है। मतलब बहुत सारी हम पे एक्यूजेशंस लगती हैं, उसमें से ये भी है कि जी हम एग्रीकल्चर के खिलाफ हैं या हम उसके खिलाफ हैं।
नहीं, खेती बाड़ी करें बैठ के, उसका शहरों से क्या ताल्लुक है?
नहीं नहीं, खेती बाड़ी
करें,
खेती बाड़ी भी करनी होती है, लेकिन ये हमें सोचने की जरूरत है कि डिस्पाइट बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी लो क्यों है। हमारी मतलब वही यील्ड, आप ये एक लाइन डिवाइड कर रही है ईस्ट और वेस्ट पंजाब को, आप सिर्फ बॉर्डर पार करते हैं तो आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट मिलती है।
मैं आपको सिर्फ स्लाइटली डिफरेंटली बात करूं, मुझे बताइए कौन सी दरियाफ्त है, कौन सी तहकीक है, कौन सी कल्चरल डेवलपमेंट है, कोई चीज है जो शहर में नहीं हुई और देहात में हुई है? हत्ता कि ये भी है कि जो आपके एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन है ये भी शहरों में हुई है, आपकी जो क्रॉप्स निकली हैं वो भी शहरों में निकली हैं। तो शहर जो है वो इंसानियत की, जैसे ग्लेजर, एक बड़ा फेमस इकोनॉमिस्ट ग्लेजर, उसकी किताब का टाइटल ही है द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड इज अ शहर। और शहर जो है सब कुछ बनाता है और करता है। तो आप मुझे बताइए कि पाकिस्तानी शहर क्यों नहीं ये कर सकते, कुछ बताइए क्या वजह है?
सर उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, उनमें से चंद एक ये हैं कि हमारी जो, मैं क्योंकि रेगुलेशन पे ज़्यादा काम करता हूँ, मैं रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव आपको दूंगा कि हमने जो रेगुलेशंस इम्पोज की हुई हैं शहरों में,
वो
जोनिंग जिसको हम कहते हैं, जैसे अभी हम इस्लामाबाद में बैठे हैं तो हमारे पास इस्लामाबाद का एक मास्टर प्लान है जो हमें बताता है कि अगर आपने कोई बिजनेस एक्टिविटी करनी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, उसके लिए ये डेडिकेटेड एरिया है, इसके अलावा आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आपने कोई घर बनाना है तो वो इस दो फ्लोर से ऊपर नहीं बन सकता, ये मैक्सिमम हाइट है। अगर आपने कोई प्लाजा बनाना है तो वो 6 स्टोरी से ऊपर नहीं बन सकता। ये रेगुलेशन है जोनिंग, जिसको जोनिंग रूल्स हम कहते हैं। अच्छा, उसका हो ये रहा है कि 2 स्टोरी से ऊपर घर नहीं बनेगा तो घर जो है वो बजाय इसके के वर्टिकली एक्सपेंड करें, वो हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड कर रहे हैं, जैसा कि अभी हम इस्लामाबाद में देख रहे हैं। मुझे नहीं नजर आता कि
देखिए, ये इसमें छोटी सी बात मैं इंटरप्ट करूं, हम पाइड में बड़े आदी हैं इस चीज के, जो हमें मिल्टन फ्रीडमैन ने सिखाई थी बहुत पहले, कि एक होती है एकेडमिक बात। उस एकेडमिक का बात का फायदा कोई नहीं अगर आप एक सेंटेंस में बात ना समझा सकें। तो शहरों पे तो मेरा ख्याल है बड़ी सिंपल तहकीक क्या शो करती है, मैडम असली शहर कौन सा होता है, क्या उसको डेफिनेशन क्या होगी?
आपके जहन में जो डेफिनेशन है आप बोल रहे
बताइए बताइए। हाई राइज, डेंसिटी,
वॉकेबिलिटी,
मिक्स्ड यूज। अब ये क्या है? आप जब चीन गई थी आपने क्या देखा था वहां?
कोई आपको सिंगल डबल स्टोरी नहीं नजर आते। और उसमें ये नहीं कि मैं सिर्फ शंघाई की बात कर रही हूँ, इवन उरुमची जैसी जगह जो कि बाय चाइनीज स्टैंडर्ड्स सबसे नीचे आती है।
और उनसे जब पूछा गया कि जी हमें दिखाएं ये,
उन्होंने कहा वो नहीं है, कोई बहुत पुराना घर अभी रह गया होगा डिमोलिश होने के लिए, अदरवाइज ये अब नहीं होता यहाँ।
ठीक, वो कहते हैं हम इनमें रहते ही नहीं। ठीक है, नंबर दो, सड़कों पर चहल पहल थी कि नहीं थी? और गाड़ियों का क्या था? गाड़ियां आपको दंदनाती फिरती थी, वॉक ओवर, फ्लाई ओवर वगैरह सब मिलते थे वहाँ?
चाइना में तो थे। खैर, आई थिंक हमने जो थोड़ा सा आइडिया ऑफ डेवलपमेंट लिया वो दुबई और चाइना से इंस्पायर होके लिया है, इसलिए हमें फ्लाई ओवर चाइना में नजर आ रहे थे। लेकिन हम मेरे ख्याल में दूसरे मुल्कों से जब कोई आइडिया भी पिक करते हैं तो जो वर्स्ट आइडियाज होते हैं हम वो पिक करते हैं।
अच्छा, और सड़कों पर आपको ठेले नजर आ रहे थे?
वो हर जगह होते हैं, वो हर जगह होते हैं। और वो मेरे ख्याल में एक सिटी को एक फ्लेवर देते हैं और आपको एटलीस्ट टू मी दे गिव अ वेरी कोजी फीलिंग।
तो हमारे शहर बिल्कुल अपॉर्चुनिटी के लायक नहीं है। बच्चे यहाँ बेचारे, फॉर एग्जांपल मुझे परसों एक बच्चा मिला, और काफ़ी बच्चे ऐसे मिलते हैं, वो बेचारा कह रहा है मैं साल से इस्लामाबाद में घर नहीं ढूंढ सक रहा, क्योंकि मुझे कहते तुम बैचलर हो, यहाँ रह ही नहीं सकते।
तुम बैचलर हो नहीं रह सकते, तुम अकेली औरत हो तुम नहीं रह सकते, तुम्हारे बच्चे ज्यादा हैं तुम नहीं रह सकते। मतलब कुछ तो आपके जोनिंग के मसाइल हैं, कुछ आपके इंडिविजुअल मसाइल हैं।
अच्छा सर, एक और सवाल है, एक बहुत बड़ा अहम एंगल है कि अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स पढ़ लें जो जहां पे मतलब रिफॉर्म्स की या ग्रोथ की یا کوئی بھی ڈیولپمنٹ پلان کے, تو وہ سارے فوکس کرتے ہیں کہ جی آپ ایکسپورٹ کر دیں, پاکستان بس ایکسپورٹ کر دے, ایکسپورٹ کرے, ایکسپورٹ کرے. اچھا کرنا کیا ہے کہ جی یہ آپ کے 5-6 سیکٹرز ہیں, ان کے ایکسپورٹ بڑھا دیں. لیکن کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہے وہ ڈومیسٹک کامرس یا لوکل ویلیو چین اس کی بات نہیں کرتا ہے. اس ڈاکومنٹ میں ہم اس پہ بھی بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے گلوبل ویلیو چین کا پارٹ بننا ہے تو آپ کو لوکل ویلیو چین جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اب جو لوکل ویلیو چین ہے سر, وہ تو ہوگی ڈیولپ مارکیٹس میں. تو کیا ہمارے پاس مارکیٹس ہیں کہ ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ لوکل ویلیو چین جو ہے وہ ڈیولپ کر سکے؟
یہ بڑی آپ کو میں آسانی سے بات سمجھا دیتا ہوں. آپ چھوٹے ہیں, آپ کو یہ بات پتہ نہیں ہوگی. میرے زمانے میں ایک پہلوان ہوتا تھا, بھولو پہلوان. بھولو پہلوان کو ہم نے مربے دیے, سرکار نے مربے دیے تھے, اس کی بڑی سبسڈی تھی اس کو جناب.
دونوں طرح کے مربے, کھانے والے بھی اور
سب کچھ زمین والے بھی. اور وہ حالاں وہ کہتا تھا, بلکہ ہوا یہ کہ وہ لڑتا کسی سے نہیں تھا, اس کو کمپٹیشن کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی, وہ رستم زمان تھا. کبھی کبھی وہ ایک سال میں ایک دفعہ وہ بلا لیتا تھا کوئی باہر سے, کوئی فرسودہ قسم کا موٹا سا بندہ, اس کو مار مور کے بھیج دیتا تھا, بٹ کچھ نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, وہ ایک جاپنیز ریسلر تھا جس نے محمد علی سے لڑائی کی, انوکی اور محمد علی کا ڈرا کیا. تو پھر آپ کو پتہ نا اسلام خطرے میں پڑ گیا, تو پھر یہاں سے ڈیمانڈ آئی کہ تم لڑو اس سے, تو اس کو لڑنا پڑا. پہلی دفعہ اوپن کمپٹیشن میں آیا وہ, اس سے پہلے وہ پروٹیکٹڈ تھا, اس سے پہلے وہ ماشاء اللہ یہاں چیمپئن تھا, گرز لے کے پھرتا تھا, اس کی بڑی آؤ بھگت ہوتی تھی, پروٹوکول ہوتا تھا, سب کچھ ہوتا تھا. یہ اور بات ہے, وہ ایک پرائم منسٹر کا رشتہ دار بھی ہے, خیر کوئی بات نہیں. تو وہ جناب کیا کہتے ہیں, جب وہ گرز لے کے پھرتا تھا, ٹھیک ہے, تو اس کو اسلام نے کہا کہ جی لڑو, تو لڑا. پھر وہ جب ڈیمانڈ آئی تو جب وہ لڑنے کو گیا تو اس سے پہلے ٹی وی انٹرویو ہوا, تو اس سے پوچھا گیا, اس نے کہا جی خوراک ہے اور یہ, اس نے بتایا ساری ماضی کی باتیں بتائی, ساری بتائیں کہ جی 19ویں صدی میں یا 17ویں صدی میں کیسے پہلوان بنتے تھے. اور ہم دے سن کے, نیا نیا ٹی وی آیا تھا, ہم حیران ہوتے تھے, بھائی واہ یہ کیا ہو رہا ہے, بڑی اس کو چار بکرے کھاتا روز اور ماشاء اللہ یہ وہ وغیرہ وغیرہ. انوکی آئے, انوکی سے بات کی, وہ فٹ تھا, باڈی بلڈر ٹائپ. اس سے پوچھا, اس نے کہا یار میں تو عام کھانا کھاتا ہوں, صبح دوڑنے کھاتا ہوں, دوپہر کو یہ, اس کا کوئی خوراک پہ زور نہیں تھا. اس سے پوچھا ٹریننگ کیا, کہتا تو میں تو مارننگ ٹریننگ کرتا ہوں, ویٹ لفٹنگ کرتا ہوں, جم جاتا ہوں, بھاگتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں. انہوں نے اس کو جب لڑوایا تو اس نے 3 منٹوں میں ختم کر دیا. وہ بھولو نے کہا میں نہیں لڑوں گا, میرا چھوٹا بھائی لڑے گا, 3 منٹوں میں اس ختم کر دیا. اب لوگوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. اب یہی دیکھیں نا, ہمارے یہاں یہی چیز ہے, ہماری جو انڈسٹری ہے وہ باہر جانا نہیں چاہتی, لڑنا نہیں چاہتی.
پروٹیکٹڈ انڈسٹری ہے, جیسے پروٹیکٹڈ
بھولو تھا. اب آپ دیکھیں,
نان کمپیٹیٹو بھولو, نان کمپیٹیٹو انڈسٹری.
اب اگر آپ کرکٹ میں چاہتے ہیں کہ کرکٹ کوئی نہ کھیلے, یہی کرکٹر بنے, تو پھر آپ سوچ لیں کتنی گیم انجوائے کریں گے. تو ہمارے یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں. تو ایک اور چیز, ہم نے جان کے یہ باتیں ایسے لکھی ہیں. اکنامکس میں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, ایکسپورٹ بڑھا دیں, ہم کہتے ہیں ایکسپورٹ بڑھ ہی نہیں سکتی. آپ کرکٹ کھیلنا ہے تو بابر اعظم آپ کو تیار کرنا ہوگا, نہیں تو مجھے پروٹیکٹ کر لے, میں بھی کرکٹ کھیل لوں گا, ماشاء اللہ میں بھی بڑے چیمپئن بنوں گا, کرکٹ پہن کے پھروں گا, پر مجھے کھیلنی بالکل نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ کو جو انڈسٹری ہے اس کو ٹرین کرنا ہے ٹو بی دا بیسٹ چیمپئن ان دا ورلڈ. وہ کیسے ہوگی, ان کو روز کھیلنا پڑے گا, روز کھیلنا پڑے گا. جیسے کرکٹر بنتا ہے تقریباً روز گیم کھیلتا ہے, تو یہ کیا کہاں کھیلیں گے, انٹرنیشنل جگہ جا کے کھیل لیں, لوکلی پروٹیکٹڈ رہیں گے تو رہ جائیں گے. جیسے ہماری کار انڈسٹری 70 سال سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں, وہ کہیں جا نہیں رہی. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے باتیں لکھی ہوئی ہیں. پر ہم نے یہ سب چیزیں جو لکھی ہیں اس لیے لکھا ہے, ہم نے پولیٹیکل بھی لکھا ہے, بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے رول سیٹ ہو جائے. ابھی رول نہیں سیٹ ہوئے. اور ہم نے فسکل مینجمنٹ اوپننیس جو ہے وہ الگ بعد میں لکھی ہے. اب فسکل مینجمنٹ بھی ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو بجٹ ہے, ہماری پالیسی میکنگ کیپیسٹی نہیں ہے. بالکل, وی ہیو نو اکانومسٹ ان دا سسٹم, اکانومی سارے سسٹم سے باہر بیٹھے ہوئے. ہماری پالیسی میکنگ کیپیسٹی ایسی ہے, اور وہ پولیٹیشنز آ کے ایسے اس میں چمچے مارتے ہیں. جیسے کہ منسٹر فار انرجی, ہم کہتے ہیں منسٹریاں کم ہونی چاہیے, جو میرا خیال ہے ایک منسٹر پی 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 نے بھی اٹھا رہی ہے شاید کہ منسٹریاں کم ہونی
چاہیے.
اور میں تو کہتا ہوں باقی منسٹریاں ختم کریں, ٹیکنیکل ایریاز میں منسٹری نہیں ہونی چاہیے. اس پہ ہم بات کریں.
اچھا, یہ ایک اور لفظ جو ابھی میں نے کچھ گنوائے تھے نیگیٹو لسٹ کا, جو پاکستان کی سوچ میں حصہ ہے, وہ ٹیکنوکریٹ بھی ہے.
یہ مجھے بتائیں اتنے گندے لوگ کیوں ہوتے ہیں ٹیکنوکریٹ. میرا خیال ہے اس کا ایک اور بھی مسئلہ ہے. ہمیں پتہ ہے کیوں برے لگتے ہیں, کیونکہ وہ پڑھائی لکھائی کا شوق نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں جو پڑھا لکھا بندہ ہے نا,
نہیں نہیں سر, میرا خیال ہے کہ ہم غلط بندے کو ٹائٹل دے دیتے ہیں کہ یہ ٹیکنوکریٹ ہے. उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होती है और हम समझते हैं कि ये टेक्नोक्रेट है. हालांकि दुनिया में हमारे पास बड़ी एग्जांपल्स हैं. अभी मैडम ने मनमोहन सिंह की बात की, वो भी टेक्नोक्रेट के तौर पे आया था. अब मोंतिक भी टेक्नोक्रेट था, बल्कि वो भी टेक्नोक्रेट
है. मैं एक जुमले का इजाफा कर सकती हूँ कि हम में से किसी को शौक नहीं है सरकार का हिस्सा बनने का, इसलिए इसको प्लीज ये ना समझा जाए कि ये हमारी एप्लीकेशन है कि हमें एज टेक्नोक्रेट लिया जाए. लेकिन बहुत सारे
मैं सरकार में रह के आया हूं, उससे बोरिंग और गंदा जॉब कोई नहीं है. सारा दिन मीटिंगों का गुजरता है और सारा दिन मीटिंगें, फरसूदा मीटिंगें, इस पर भी हमने पेपर लिखा हुआ है, याद है ना. मीटिंगें आर द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड. बल्कि स्टीव जॉब्स कहता था मीटिंग इज नॉट वर्किंग.
हाँ
जी.
तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें दुरुस्त करने की जरूरत है. आई थिंक हमें थोड़ा अब वाइंड अप करने की भी जरूरत है.
अच्छा मैडम, हमें बताइएगा.
हाँ.
कि बहुत से एरियाज कवर किए, कौन से ऐसे एरियाज हैं जो रह गए जिनको नहीं किया, कि क्या वजह थी कि पाइड का काम नहीं था या किस वजह.
मैं आपको बताती हूँ. देखें, एक तो ये कि आपने फोकस रखना है. हम ऐसा नहीं है कि बाकी जो एरियाज हमने नहीं कवर किए उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है. रिफॉर्म की ज़रूरत हमें हर चीज़ में है. लेकिन कुछ एरियाज जहाँ हम नहीं गए उसकी दो वजूहत, कुछ हमारे मैंडेट में नहीं आती, कुछ हमारी उस पर रिसर्च अवेलेबल ही नहीं थी. जैसा हम कन्फ्लिक्ट पे नहीं गए, फॉरेन पॉलिसी पे नहीं गए. पाकिस्तानी में बहुत एक फेवरेट सब्जेक्ट है, वो हमेशा हम पे आते हैं जी, मिलिट्री की बात नहीं की. ऐसा जो सिविल सर्विस की हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं वो मिलिट्री पे भी अप्लाई करती है. लेकिन एज सच हम मिलिट्री का उस तरह इसमें आपको तस्करा नहीं नजर आएगा. विच डज नॉट मीन कि उसको रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि इस डॉक्यूमेंट को हम सारे प्रोविंसेस में भी लेके गए. इसमें कुछ चीज़ें जो हैं, मेजॉरिटी चीज़ें फॉर दैट मैटर, प्रोविंसेस पे भी अप्लाई करेंगी. लेकिन कहीं उनको अपने लिए इसको अडेप्ट करने की होगी. इसमें मैं बलूचिस्तान का ज़रूर तस्करा करूँगी कि जब हम वहाँ गए, जब मैं वापस आई हूँ तो उसके बाद उन्होंने कोई एक हफ़्ता लिया होगा, उन्होंने पूरा एक डॉक्यूमेंट हमें भेजा जिसमें इसी को बेस बना के उन्होंने उसको बलूचिस्तान के लिए थोड़ा अडेप्ट किया. उन्होंने कहा कि ये हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी.
और मेरा ख्याल है ये पाइट छापने भी जा रहे
हैं. पाइट छापने जा रहे हैं. उनसे मैंने परमिशन ली कि जी इसको अगर आप लोग अलाउ करें तो इसका एक फॉलोअप के तौर पर एक स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट हम प्रिंट कर दें. तो उन्होंने कहा.
आखिर मैं आपसे दो बातें पूछ लूँ दोनों से. पहली चीज, क्या ये एक कंप्लीट नुस्खा है ऐसा कि मैं दवाई खाऊं और ठीक हो जाऊंगा?
नहीं, ऐसा ऐसा तो इवन जो डॉक्टर भी दवाई देता है ना, आप उस दवाई के बारे में भी नहीं कह सकते. और ऐसी चीज के जिसमें 25 करोड़ लोग इन्वॉल्व्ड हों, मजीद नहीं. आपको बहुत सारी चीजें करनी है इस दवाई के साथ साथ. जिस तरह डॉक्टर भी कहता है कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपको परहेज करनी है, आपको ये सेम इसके साथ है. हम ये कहीं से भी नहीं कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है पाकिस्तान के तमाम मसलों का हल.
और सबसे अहम बात ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट इसमें 200 से ऊपर जो रिफॉर्म आइडियाज हैं, ये डायरेक्शन दे रहे हैं आपको कि हमें इस डायरेक्शन पे रिफॉर्म की जरूरत है. अगर आप उसकी निटिग्रिटीज पे जाएंगे कि ये मैकेनिज्म क्या होगा इस रिफॉर्म का, उस पे भी अभी फर्दर हमें काम करने की जरूरत है.
ये एक लाइव डॉक्यूमेंट है.
Exactly.
ये कहीं से भी नहीं है कि बस जी ये अब ये नाजल हो गया है और इसको हमने टू द टी अप्लाई ना किया तो डिजास्टर है, और अगर कर लिया तो सब कुछ जो है वो अच्छा हो.
इसीलिए पाइट जो है वो प्रैक्टिशनर्स के लिए कह रहा है कि ये आपके लिए रिफॉर्म डॉक्यूमेंट है.
एकेडेमिया
है उनके लिए ये रिसर्च एजेंडा है. तो पाइड भी इसको मतलब एज अ रिसर्च एजेंडा ले रहा है. हमारा फ्यूचर का जितना भी वर्क है वो इन्हीं रिफॉर्म आइडियाज के गिर्द.
इसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि मेरा ख्याल हम रिफॉर्म को समझते हैं जैसे कि बटन दबाव हो गया, बत्ती जल गई. नहीं, मेरा ख्याल रिफॉर्म एक प्रोसेस होता है. और रिफॉर्म प्रोसेस क्या होता है? आपको सारों का माइंड सेट चेंज करना है. तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस और उसको आपको इट्स ऑल्सो लर्निंग बाई डूइंग.
Yes.
It's also iteration, innovation, गलतियां भी होगी सब कुछ उसको. तो हम जो कह आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, directions हैं.
और एक चीज इस पे मैं और ऐड कर दूं कि हम majority चीजें जो इसमें suggest कर रहे हैं उसकी कोई cost नहीं है. majority चीजें, मैं ये नहीं कह रही कि सारी चीजों की cost नहीं है. आपको सिर्फ the way you are doing things, you have to change those ways. उसकी cost नहीं है. हाँ, उसकी emotional, mental cost कुछ लोगों के लिए जरूर हो सकती है, लेकिन उसकी कोई financial cost नहीं.
बल्कि I would add कि अगर हम ये रिफॉर्म करें तो शायद इसका फायदा इतना हो कि ग्रोथ बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी.
नहीं, वो तो बढ़ ही रही है. वो
नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं नॉट एनी कॉस्ट नहीं है, फायदे बहुत
नहीं हैं. फायदे तो हम बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहेंगे ना कि हाँ जी उस फायदे के लिए ये कॉस्ट पहले आपको बेयर करनी पड़ेगी. तो मेजॉरिटी जो इसमें हमारी सजेशंस हैं वो फायदे तो हैं ही हैं, लेकिन उसकी उसको करने की कॉस्ट नहीं है।
अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन जो बार बार लोग पूछते हैं, उस पर बात जरूर करनी चाहिए, वो ये कि हमारा प्रॉब्लम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन है, हमें ये सब चीज़ें पता है और ये कोई मसला नहीं है, हमारा प्रॉब्लम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन है, इस पर हाउ वुड यू रिएक्ट टू दिस?
आई वुड डिसएग्री। मैं सिंपली जो मैंने कुछ मिसालें दी कि हमारे इन कंसेप्ट्स में ही प्रॉब्लम है, तो अगर हमारे कंसेप्ट ही सही नहीं है तो इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत दूर की बात है। आप पहले उस प्रॉब्लम को सही समझें तो सही, और इतनी रिसर्च करने के बावजूद इवन हम ही क्लेम कर रहे हैं कि हमें पूरी प्रॉब्लम जो है वो समझ आ गई है, हम जहाँ भी गए इवन इन प्रॉब्लम्स में हमें बहुत डिफरेंट व्यूज मिले हैं। तो नहीं, इट इज़ मच मोर देन इम्प्लीमेंटेशन। क्या इस अगर हम कहते हैं कि जी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसीज परफेक्ट है? ऐसा नहीं है।
बिल्कुल, मैं डॉक्टर नायब के साथ एग्री करूँगा, हमें अपनी प्रॉब्लम्स भी सही तरीके से दराक नहीं है उनका कि असल इशू मसला कहाँ पे है। आप अभी आपने रियल इस्टेट मार्केट की बात की, हमारे बहुत से जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको ये भी नहीं पता कि रियल इस्टेट के असल मसाइल क्या हैं। हम ये समझ रहे हैं कि जी मसला ये कि ये रेगुलेटेड नहीं है, एक नई रेगुलेटरी बॉडी बना दो, या FBI सोचता है अच्छा जी कि ये अनडॉक्यूमेंटेड है तो अब जब भी आपने कोई ट्रांजेक्शन करनी है पहले हमसे NOC ले लें। मसाइल ये नहीं है, मसाइल जो है वो बड़े डीपर हैं। यही जैसे डॉक्टर नायब कह रही हैं कि पाइड BC पे काम कर रहे हैं कि हम पहले समझ लें कि इश्यूज क्या हैं, उसके बाद कुछ रिफॉर्म आइडियाज दें। जो आपने पहले बात की कि ये पिछले 4 सालों की जो पाइड की रिसर्च है उसका नतीजा है, वजह यही है कि हमने पहले समझने की कोशिश की है कि मसला क्या है, उसका हल क्या है, तब जाके फिर आप इम्प्लीमेंट करेंगे कुछ होगा। अभी अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि हमें एक नुस्खा आ जाता है बाहर से, वो जिसको हम टेक्निकल असिस्टेंटशिप कहते हैं, वो अच्छे होटलों में बैठ के एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन जाता है और उसकी उसको फिर हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं जिसमें ग्राउंड रियलिटी नहीं होती। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूं कि हमने जो इस्लामाबाद में रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक्ट पास किया है, उसमें हमें नहीं पता है कि हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, हमने ये नहीं असेस किया कि वो सारे का सारा काम ऑलरेडी एक एजेंसी कर रही है, हमने एक नई एजेंसी बनाने की तजवीज़ दे दी कि ये सारा काम वो करेगी तो मार्केट ठीक हो जाएगी। तो इसलिए मेरी नज़र में ये डॉक्यूमेंट सबसे अहम इसलिए है कि हमने बड़ी डीप थिंकिंग के बाद रिसर्च के बेस पे ये रिफॉर्म्स आइडियाज दिए।
अच्छा, इसके साथ रिलेटेड एक और चीज़ है, मेरे ख्याल बहुत से लोग तरक्की को समझते हैं जैसे खाना पकाना है। मैं आजकल खाना पकाता हूँ तो मैं YouTube के वीडियोस देख के ना खाना बनाने की कोशिश करता हूँ, वो भी कई दफ़ा अच्छा नहीं बनता, गलत हो जाता है, पर वो रेसिपी मिल गई मैंने बना लिया, ठीक है हो गया। पर क्या डेवलपमेंट इस तरह ही हो सकता है कि हम वो बाहर से कंसल्टेंट आए हमें एक डॉक्टर नुस्खा दे दे और हम खाने की तरह अब आलू छील लो, अब प्याज छील लो, अब ये कर लो, अब वो काट के अब मसाला बना लो, अब ये कर लो, क्या डेवलपमेंट ये होती है?
बिल्कुल
खानसामा हमें करा सकता है, क्योंकि हमारी जो शुरू की डेवलपमेंट थी ना वो यही थी, उन्होंने कहा कि भाई तुम ये नुस्खे ले लो और करो, हम फेल हो गए, पूरी दुनिया में ही हुआ, पूरी दुनिया में फेल हो गए। तो डेवलपमेंट क्या होता है फिर, कैसे होगी?
सर इसीलिए पाइड के जहाँ बहुत से स्लोगन हैं, एक उनमें से एक स्लोगन ये है कि लोकल प्रॉब्लम लोकल रिसर्च लोकल सॉल्यूशन, कि जब तक आप अपनी डेवलपमेंट एजेंडा जो भी आपका होगा उसको लोकली नहीं कंटेक्चुअलाइज करेंगे उस वक्त तक डेवलपमेंट नहीं आ सकती है। उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स भी हैं, आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, आपके गवर्नेंस के फैक्टर्स भी हैं, सारे फैक्टर्स हैं जो आपने लोकल पहले समझने हैं फिर करने हैं। ऐसा नहीं है कि जो डेवलपमेंट मॉडल आज अमेरिका में फॉलो हो रहा है वही हम इम्प्लीमेंट कर देंगे पाकिस्तान में तो हम डेवलप कर जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास वो डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेज पे हैं, वो मॉडर्नाइजेशन जो हम यूज कर रहे थे उसके डिफरेंट स्टेज पे हैं।
और वकार ये ऐसा कि जो ये रेसिपी वाली एनालॉजी है उसको अगर मैं इस्तेमाल करूँ कि इवन अगर हम कोई वेस्टर्न रेसिपी देख रहे होते हैं ना तो हम कहते हैं थाइम तो नहीं है, क्या इसके लिए हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं? आपको लोकली अडेप्ट करनी होती है, और अगर आप हर उस इंग्रेडिएंट की तलाश में निकल पड़े तो आप देखेंगे उसकी कॉस्ट क्या आएगी।
लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, जो इकोनॉमिक्स का जो शोभा है या पूरी थिंकिंग है, उसमें से कुछ चीज़ें बड़ी नमाया हमें नज़र आ रही हैं। एक चीज़ तो हमें ये नज़र आ रही है कि अगर आप अपनी इकानोमी को क्लोज रखेंगे प्रोटेक्टिव जैसे अभी आपने रखा तो तरक्की नहीं करेंगे, जब आप इकोनॉमी को लिबरलाइज करेंगे दुनिया के साथ
भोलू पहलवान
बनाएंगे तो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, आप दुनिया के साथ कंपीट करेंगे तो तरक्की होगी। ये तो हमें इस प्रोफेशन ने बता दिया या जितने भी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है उनसे चीजें निकल आई। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जो ब्यूरोक्रेसी है जिसको हम स्वच्छ कहते हैं या रेगुलेशन है, इसको आप जब तक बिजनेस फ्रेंडली और मॉडर्नाइज नहीं करेंगे तरक्की नहीं हो सकती। आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, आपकी डोमेस्टिक मार्केट्स नहीं डेवलप होंगी, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये दो तीन इस तरह के मैसेजेस हैं जो बड़ा क्लियरली नुमाया हमें नजर आ रहे हैं जितना भी आप लिटरेचर पढ़ लें इकोनॉमिक्स में। तो इसके साथ साथ आपकी सिटीज हैं कि सिटीज जो हैं वो
आपकी बेसिकली सिटीज हैं, आपकी कम्युनिटी है।
बिल्कुल,
कम्युनिटी बिल्डिंग के बगैर भी
कुछ आगे के लिए भी छोड़ दें या आज सारा कुछ आपने करना है?
मेरे ख्याल में बस जाने से पहले मैं ये कहूंगी कि इलेक्शंस आ रहे हैं और मैं डेमोक्रेसी में बिलीव करती हूँ, और डेमोक्रेसी में एक जो एवरेज सिटीजन है वो अपनी ताकत समझे। ये एजेंडा है, इसके बारे में नॉइज क्रिएट करे, वो मांगे रिफॉर्म, वो मांगे अपॉर्चुनिटीज, और ये स्लो प्रोसेस है। ये हम इम्पेशेंट ना हो,
यानी कि पेड कॉम ना बने, थोड़े दलेर हो,
अपनी ताकत समझें। ये जब हम अपनी ताकत समझेंगे, हम मांगे तो सही, हम कितना मांगते हैं।
मैडम, हम तो कहते हैं ये डेमोक्रेसी है ही नहीं, हम तो कहते हैं ये डेमोक्रेसी आपकी बड़ी फॉल्टी है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हमने पूरा चैप्टर लिखा हुआ डेमोक्रेसी पे, उस पर बात करेंगे किसी
और अभी अभी नहीं करेंगे।
आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स
दे, एक चीज उससे पहले कि आप कंक्लूड करें, डेमोक्रेसीज जो हैं वो केओटिक होती हैं। डेमोक्रेसीज कभी भी वो डिक्टेटरशिप होगी कि जहाँ डंडा है और बस सब खामोशी से चल रहे हैं। यू हैव टू क्रिएट नॉइस, यू हैव टू बी पेशेंट एंड कीप पुशिंग फॉर इट। मैं पाइड की ही अगर चीज़ें देखूँ तो ओवर द ईयर्स हमने 2005-07 में सिटीज़ की बात शुरू की थी, हमने वॉकबिलिटी की बात शुरू की थी, हमने जोनिंग की बात की थी। उस वक्त हम बहुत चंद थे और ये बात कर रहे थे। अब आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं। आपको एक क्रिटिकल मास क्रिएट करना है इन आइडियाज़ के लिए, जो कि इस बात को करते रहें। एक बहुत पुरानी मिसाल दूंगी कि पत्थर पे भी ना अगर पानी का कतरा पड़ता रहे, अल्टीमेटली उसका निशान वहाँ पड़ने लगता है।
देखिए जी, ये पाइड है, पाइड में बड़ी इख्तलाफ राय होती है, हमारी बड़ी बहसें होती हैं। मैडम बहुत लेफ्ट विंग है, मैं बहुत राइट विंग हूँ, ये डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, वकार साहब बहुत वो सोचते हैं कि जी
ये दरमियान
की कोशिश करते हैं।
तो इंशाल्लाह आपके साथ बात करते रहेंगे और होपफुली कोशिश करते रहेंगे कि इस मुल्क को हम री इमेजिन, टू यूज द वर्ड ऑफ सम अदर्स, इसको री इमेजिन करें। पर री इमेजिन ये ना करें वडेरों का मुल्क, नहीं हमें चाहिए। हमें नहीं मुल्क चाहिए पुराने पॉलिटिशियंस का, हमें मुल्क चाहिए यंग वाइब्रेंट यूथ का। और ये यूथ भी नहीं जो हमारा यूथ है, जो उठता ही नहीं, बोलता ही नहीं, लड़ता ही नहीं, जो सीखना नहीं चाहता। हम वो यूथ बनाना चाहते हैं जो कि दुनिया में जाके जीतेगा, जो कि दुनिया में जाके नाम रोशन करेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।